कमरे में अब कुछ देर खामोशी छाई रही। हल्की धूप खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में आ रही थी, लेकिन रत्ना देवी का चेहरा अभी भी उदासी और बेचैनी में डूबा हुआ था। तभी दरवाज़ा हल्का खुला और मधु, हवेली की भरोसेमंद नौकरानी, धीरे धीरे कदम रखती हुई कमरे में आई। ठकुराइन में चाय ला रही हूँ, उसने हल्की आवाज़ में कहा, जैसे किसी को परेशान ना करना चाह रही हो। रत्ना देवी ने कोई जवाब नहीं दिया। उनका चेहरा बिस्तर पर टिके हुए था, आंखें आधी खुली आधी बंद। मधु उनके पास गई और हल्का सा हाथ उनके कंधे पर रखा। ठकुराइन, आप उठिए, मैं चाय ले आई हूँ। मधु की आवाज़ पर रत्ना देवी की आंखें धीरे धीरे खुली, लेकिन चेहरे की थकान और दर्द साफ दिख रहा था। मधु ने धीरे धीरे उनके माथे को छुआ और महसूस किया कि रत्ना देवी का तापमान सामान्य से कहीं ज्यादा है। ओ माँ, बहुत तेज बुखार है, मधु ने हल्की चिंता में कहा। आप बिल्कुल नहीं उठे, जल्दी डॉक्टर को बुलाना चाहिए। तभी कमरे का दरवाज़ा फिर से खुला। कुछ ही मिनटों में विश्वनाथ कमरे में दौड़ते हुए आए। उनके चेहरे पर गंभीर चिंता साफ झलक रही थी। उनके साथ डॉक्टर खड़े थे। माँ, विश्वनाथ ने घबराहट में कहा, लेकिन रत्ना देवी का चेहरा अभी भी हल्का बेहोश सा था। डॉक्टर ने तुरंत उनके हाथ पर पल्स पकड़ते हुए कहा, बहुत तेज बुखार है, कमजोरी भी अधिक है, स्ट्रेस और चिंता की वजह से ये और बढ़ सकता है। अब इसे बिल्कुल कंट्रोल में रखना होगा, किसी भी तरह का तनाव इसे और ज्यादा कमजोर कर सकता है। विश्वनाथ ने हल्की सांस ली। ठीक है डॉक्टर, मैं पूरी देखभाल करूंगा, आप चिंता ना करें। अब क्या करना होगा? डॉक्टर ने सिर हिलाया। सबसे पहले बुखार कम करने वाली दवाएं, उसे पूरी तरह आराम देना जरूरी है। कमरे में वातावरण हल्का और शांत रखें, और सबसे महत्वपूर्ण, अब स्ट्रेस बिल्कुल न होने दें। विश्वनाथ ने डॉक्टर की बात को ध्यान से सुना। उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा। ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा। डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कमरे से बाहर कदम बढ़ाया। कमरे में अब बस एक सन्नाटा था। मधु चाय लेकर पास खड़ी थी, लेकिन वो भी डर और चिंता में डूबी हुई थी। कुछ ही देर बाद सुषमा देवी धीरे धीरे कमरे में आईं। उनका चेहरा भी हल्का तनाव लिए हुए था। उन्होंने विश्वनाथ की तरफ देखा और धीरे धीरे बोली, विशु बेटा, रत्ना अक्षरा को लेकर बड़ी परेशान थी। शायद वो नहीं चाहती कि तुम उसे छोड़कर किसी और को हवेली में लाओ। विश्वनाथ ने उनकी बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी चिंता की झलक थी। उसने धीरे धीरे मधु और सुषमा की तरफ देखा। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता उसकी माँ की सेहत थी। रत्ना देवी धीरे धीरे होश में आईं। उनकी आंखें खुली और उन्होंने हल्का सा सिर हिलाया। उनके होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन अभी भी कमजोरी और बुखार की छाया थी। विश्वनाथ उनके पास झुका और धीरे से कहा, माँ आप कैसे हैं? रत्ना देवी ने कमजोर आवाज में कहा, विशु मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थकान है। विश्वनाथ ने उनका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, माँ आप अब बिल्कुल आराम कीजिए, मैं सब देख रहा हूँ। सुषमा देवी ने हल्की चिंता में कहा, विशु तुम्हें पता है माँ को अक्षरा की चिंता है, शायद वही डर है कि तुम उसे छोड़कर किसी और को हवेली में लाओ, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में केवल अक्षरा ही है। विश्वनाथ ने हल्का सा मुस्कान दिया, हाँ माँ मैं जानता हूँ, लेकिन फिलहाल आपकी सेहत सबसे जरूरी है, चिंता मत कीजिए। रत्ना देवी ने हल्की आवाज में कहा, विशु हाँ मैं जानती हूँ, बस मुझे यकीन है कि तुम वही करोगे जो सही है। विश्वनाथ ने सिर हिलाया, माँ चिंता मत कीजिए, मैं अक्षरा से ही शादी करूंगा, बस आप आराम करें। रत्ना देवी ने अपनी कमजोरी के बावजूद हल्की मुस्कान दी, उनके होठों पर राहत का भाव था। उन्होंने धीरे धीरे कहा, ठीक है बेटा, मुझे अब बस ये भरोसा चाहिए कि तुम सही रास्ते पर हो। विश्वनाथ ने उनकी आंखों में देखकर धीरे से कहा, माँ मैं हमेशा सही राह पर रहूंगा, और अक्षरा उसकी खुशी ही सबसे जरूरी है। कमरे में फिर एक शांत सन्नाटा छा गया। विश्वनाथ रत्ना देवी के बगल में खड़ा था, उनका हाथ पकड़कर। सुषमा देवी कमरे के एक कोने में खड़ी थी, उसकी आंखों में भी हल्की चिंता और राहत दोनों साफ थी। रत्ना देवी ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और कमरे की खामोशी में खुद को समेट लिया। उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उन्हें यकीन था कि हवेली में सब कुछ संभल जाएगा। विश्वनाथ ने अपने हाथ को धीरे से उनका हाथ पकड़े रखा। वो अब पूरी तरह शांत था, उनका ध्यान सिर्फ अपनी माँ और अक्षरा की खुशियों पर था। मधु ने चाय टेबल पर रखी और पीछे हट गई। कमरे में हल्की धूप अब रत्ना देवी के चेहरे पर पड़ रही थी, और उनके चेहरे की हल्की लालिमा अब उनके बुखार के बावजूद थोड़ी राहत दे रही थी। सभी जानते थे कि ये सिर्फ एक पल की राहत थी। हवेली में बहुत कुछ बदल रहा था, बहुत कुछ उलझ रहा था, लेकिन फिलहाल रत्ना देवी होश में थी और विश्वनाथ ने अपनी माँ को आश्वस्त कर दिया था। विशेषकर सुषमा देवी ने धीमे स्वर में कहा, विशु सब ठीक होगा, अभी बस माँ को आराम चाहिए, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। विश्वनाथ ने सिर हिलाया, हाँ सही कह रही है, अब सिर्फ माँ की सेहत मायने रखती है, बाकी सब समय आने पर तय होगा। कमरे की खिड़की से हल्की हवा आती रही। रत्ना देवी धीरे धीरे आराम की मुद्रा में बिस्तर पर लेट गईं। उनका चेहरा अब थोड़ी शांति और भरोसे के साथ मुस्कुरा रही थी। विश्वनाथ ने कमरे में खड़ा रहते हुए हल्की सांस ली। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ठहराव था, एक ठहराव जिसमें माँ की सेहत और अक्षरा की खुशियों का पूरा ख्याल था। धीरे धीरे सब ठहर गया। हवेली में सब कुछ शांत था, लेकिन भीतर की भावनाओं और आने वाली जंग की हल्की खामोशी अब भी हवा में महसूस हो रही थी। कमरे से बाहर निकलते ही विश्वनाथ ने गहरी सांस ली, जैसे अंदर की घुटन से खुद को अलग कर रहा हो। तभी उसकी नजर सामने खड़ी अक्षरा पर पड़ी। उसके माथे पर अभी भी चोट के हल्के निशान थे, बाल थोड़े बिखरे हुए, लेकिन चेहरे पर एक संभली हुई शांति थी। अक्षरा ने धीरे से उसकी तरफ कदम बढ़ाए। विशु सब ठीक हो जाएगा, उसने नर्म आवाज में कहा। विश्वनाथ कुछ पल उसे देखता रहा, उसकी आंखों में उलझन साफ थी। अक्षरा ने हल्की मुस्कान दी, मैं हूं ना, सब संभल जाएगा।